हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 22। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके पवित्र और शांत मन से गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि आशीर्वाद दीजिए कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। कृपया भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते
सति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शब्दात् अनन्य मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से चिंतयन्तः अर्थात चिंतन करते हुए माम मतलब मुझको ये जना जो व्यक्ति उपासते ठीक से पूछते हैं, तेषां उन नित्य सदा अभियुक्त भक्ति में लीन मनुष्यों की योग अर्थात आवश्यकता, क्षेम अर्थात सुरक्षा आश्रय, वहां में अर्थात वहन करता हूँ अहम यानी मैं। अनुवाद, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदना अर्चना दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामयी संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमयी बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ये अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझ जैसे मूर्ख के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान के इन शब्दों के विषय में कुछ बोलूं। मेरे अंदर ना योग्यता है ना सामर्थ्य और न ही कोई भक्ति का लेश मात्र है, परंतु गुरु और गौरंग की कृपा से प्रयास करेंगे। कहते हैं मूकम गुरु तो वाचालम, मूकम अर्थात जो गूंगा है वो भी वाचालम यानी बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है, बहुत बड़ा बहुत ही ज्ञानमयी बातें कर सकता है। मूकम गुरु तो वाचालम, गूंगा बोलने लगता है। पंगुम लंघयति गिरम, जो लंगड़ा होता है जिसके पांव नहीं होते हैं वो गिरम अर्थात बड़े बड़े पहाड़ों को लांग सकता है। यत कृपा तमहम वंदे, जिस पर गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए तो मूर्ख भवती पंडिता, जो मूर्ख है वो पंडित बन जाता है। परमानंद माधव, जब भगवान कृष्ण भगवान माधव कृपा करते हैं तभी जीव को वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, परम आनंद प्राप्त होता है और जीव वास्तव में जीव के अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये केवल भगवान की कृपा है कि
जीव कोई कार्य कर सकता है, इस भौतिक जगत में भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें भगवान की सहायता की आवश्यकता होती है। और ये जो भगवान के शब्द हैं वो इतने पवित्र हैं कि इनको, इनका बखान करने के लिए, इनको बोलने के लिए केवल जिस पर कृष्ण और गुरु की कृपा है तभी वो इनके विषय में कुछ बोल सकता है। तो मेरे जैसा मूर्ख इसके विषय में क्या बोलेगा, परंतु प्रार्थना है गुरु और गौरंग से कि भगवान के इन शब्दों को समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं अनन्याश। अनन्याश का मतलब होता है जिसका कोई अन्य लक्षण हो, अनन मतलब दूसरा कोई नहीं। जैसे अभी हम यहाँ पर भगवान ने जो हमें श्लोक नंबर 15 में बताया था, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो पृथक्त्वेन अलग अलग तरीकों से जो भगवान ने हमें बताया कि आप जो भी करते हो, यज्ञ करते हो तो यज्ञ के अंदर अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदाहम अहम औषधा मंत्रो हम अहम एवाजम अहम अग्निर अहम होतम। यज्ञ की सामग्री भी मैं हूँ और यज्ञ के द्वारा प्रसन्न जिसको किया जाता है वह भी मैं हूँ। जिसको पूछते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षाम यजुर्वेद, जो पूजनीय है वो भी मैं हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम अहम बीज अव्ययम, कि जो कुछ भी है गति भर्ता साक्षी निवास हर कुछ मैं हूँ। मैं ही वास्तव में तुम्हारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, तुम्हें भौतिक शरीर को चलाने के लिए जो कुछ चाहिए तपाम्य हम अहम वर्षम निक्रहाम उत्सृजाम्य च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम अर्जुनम। लेकिन फिर भी भगवान ने आगे कहा श्लोक नंबर 20 और 21 जो हम पढ़े कल, जिसमें भगवान ने कहा तीनों वेदों के जो जानने वाले हैं वो यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्ग किम प्रार्थयन्ते, वो यज्ञ करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं। वो इस भौतिक जगत में आनंद नहीं लेना चाहते हैं, वो अन्य लोकों में जाते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं। वो देवताओं की उपासना करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता ते पुण्य मासाध्य सुरेंद्र लोकम, इस तरह से वो पुण्य बहुत सारे करते हैं तीनों वेदों की ज्ञाता। वेदों के अंदर भोग्य सामग्री प्राप्त करने की जो विधि लिखी है उसके अनुसार पुण्य कार्य करते हैं और सुरेंद्र लोक को प्राप्त करते हैं और वहां पर अश्वंति दिव्यान देवी दो देव भोगान, वहां पर देवताओं का से भोग को प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उसके बाद वो स्वर्गलोक में बहुत बहुत समय तक भोग करते हैं। परंतु एक दिन ऐसा आता है जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। और इस तरह भगवान ने कहा एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, इस प्रकार जो तीन वेदों के अनुसार विधि में ये कार्य करते हैं उनका वास्तव में उनका क्या होता है, गतागतम वो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं फिर ये चक्कर में घूमते रहते हैं, ये वैकुंठ लोक नहीं जा सकते हैं बल्कि स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब अर्जुन ने ऐसा सुना तो अर्जुन ने कहा ये तो कोई गति नहीं हुई, ऐसा तो कितना कष्टदायी है कि एक जगह पर आप जाओ वापस वहां से निकाला जाए, वापस दूसरे पुण्य एकत्रित करो, वापस दूसरा वहां पर जाओ, ये तो बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर तो नहीं चाहिए, कोई इटर्नल बात बताओ, ये जन्म मृत्यु का चक्कर ये गतागतम कैसे है। जैसे आपके पास 1,00,000 रुपए है, आप उस 1,00,000 रुपए को लेकर जाओ कहीं पर बहुत ही ना कोई रिच सिटी हो, रिच कंट्री हो, वहां पर जाओ मॉरिशस में सिंगापुर में और वहां पर जाकर आपका 1,00,000 खत्म हो जाए तो वहां से आपको निकाल दिया जाए, मतलब निकल जाओ, आपके पास तो अब वहां खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, आपको वहां पर रहने भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर वापस से आओ, वापस से 1,00,000 रुपए कमाओ, वापस से जाओ। तो ऐसा नहीं, अर्जुन ने कहा भगवान कोई इटरनल जगह बताओ जहां से निकाला ना जाए, जहां पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोई ऐसी बात बताओ, ये त्रैविद्या तो सही नहीं है, मतलब ये जो वेदों के द्वारा जो गंतव्य प्राप्त होता है वो तो इटर्नल नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था कि आत्मा क्योंकि शाश्वत है इसलिए वो शाश्वत आनंद चाहती है। तो ये भौतिक आनंद चाहे उसे कितना भी प्राप्त हो जाए, किसी भी लोक का कोई भी आनंद प्राप्त कर ले, उसे सुख नहीं आएगा। तो भगवान आज उस वास्तविक आनंद के विषय में बता रहे हैं कि वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले भगवान ने कहा अनन्याश, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारा चिंतन यदि करना है, चिंतन का मतलब होता है किसी के विषय में सोचना, है ना, किसी का ध्यान लगाना। वास्तव में जीव सदैव चिंतन ही करता रहता है, है ना। भौतिक वस्तुओं का जब हम चिंतन करते हैं तो उसके द्वारा चिंता उत्पन्न होती है। किसी भी भौतिक वस्तु का चिंतन करो, आप सोचोगे किसी भी वस्तु के लिए तो वो चिंता बन जाती है। लेकिन जब भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के विषय में सोचते हैं, तो उस चिंतन से क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। काम वही है, सोच ही रहे हैं, या तो भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के विषय में सोचेंगे या फिर भगवान के। लेकिन भगवान यहाँ पर बोलते हैं अनन्यास, दूसरा किसी का नहीं, केवल मेरा। वास्तव में भक्तों, भगवान जीव से बहुत प्रेम करते हैं और जिससे हम प्रेम करते हैं हमारी एक इच्छा होती है। हमारी ये इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, जो आपसे प्रेम करेगा वो ये चाहेगा ना कि आप किसी और के विषय में ना सोचो, केवल मेरे विषय में सोचो। हर प्रीतम की एक ख्वाहिश होती है कि जो प्रेमिका है वो केवल मेरे विषय में सोचे, किसी और के विषय में ना सोचे, ना। क्या कोई प्रेमी ये चाहेगा कि जो मेरी प्रेमिका है वो सबके विषय में सोचती रहे, सबसे प्रेम करती रहे? कभी भी नहीं। उसी तरह भगवान भी इसी तरह के प्रीतम है। वो चाहते हैं कि मेरे बारे में जो मेरा प्रेम, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो किसी और के विषय में ना सोचें, किसी और का चिंतन ना करें। इसे भगवान कहते हैं अनन्याश्चिंतय, किसी और का चिंतन नहीं। अभी कोई बोलता है कि चिंतन करते हैं मतलब ध्यान करना, केवल भगवान कहते हैं केवल मेरा ध्यान करो, किसी और का ध्यान ना करो। तो कोई सोचेगा भाई मुझे तो भगवान का ध्यान करना आता ही नहीं है, मुझे तो ध्यान करना नहीं आता है, मैं कैसे भगवान का। हम सबको ध्यान करना आता है। इस भौतिक जगत में आप देखो, कोई भी व्यक्ति है ना, वो ध्यान कर सकता है, आसानी से कर सकता है। जैसे ध्यान का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु अभी आपके पास नहीं है आप उसके विषय में सोच के दिखाओ, है ना। तो अभी जैसे आपके पास, समझो आपकी ज्वेलरी जो बैंक में नहीं रखी है, लेकिन आप ध्यान करो, आंखें बंद करो, आपको याद आती है ना मेरी ये चीजें सारी बैंक में रखी हुई हैं। और आप अभी यहाँ पर बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, आपको मैं बोलूं कि भाई आपका जो इस महीने की जो सैलरी मिली थी वो कहाँ रखी है, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने वहां पर संभाल के रखी है। आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, आपकी सैलरी कहाँ रखी हुई है। और अगर कोई लड़की किसी से प्रेम करती है तो अगर वो ध्यान करेगी, आंखें बंद करेगी, तो फौरन उसका ध्यान कर सकेगी ना, उसे याद रहेगा कि मेरा प्रीतम कैसा है, वो कैसे करता है, मतलब। और एक माँ जब बच्चा होता है ना छोटा, वो स्कूल जाता है, तब भले वो घर में बैठी होती है, बच्चा स्कूल में होता है, लेकिन उसका मन पूरा उसमें लगा होता है। अभी उसका ब्रेक हुआ होगा, उसने लंच खाया होगा, अभी देखो 12 बजने वाले हैं, अभी देखना आएगा, अभी घंटी बजी, उसका ध्यान लगा हुआ है, वो काम कर रही है अपने घर का, परंतु ध्यान पूरा का पूरा भगवान बच्चे में लगा हुआ है। उसी तरह भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मम, तुम्हें मेरा चिंतन करना। अब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हम प्रेम करते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वभाव है प्रेम करना। आत्मा को प्रेम करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता, वो स्वाभाविक आत्मा जो है वो भगवान से प्रेम करती है। तो लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में आ गई है तो भौतिक जगत के इस कलमश के कारण प्रकृति से उसका संबंध हो जाता है और भगवान के साथ जो उसका इटर्नल प्रेम है वो भौतिक और वस्तु और व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी प्रेम को पुनः भगवान में, जो वास्तव में भगवान का है, पुनः भगवान में लगाने के लिए ही हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यही वास्तविक, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करना है। हम श्रवण क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा जो इटर्नल प्रेम जो भगवान के लिए है वो भौतिक वस्तुओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस प्रेम को खींच के पुनः भगवान के अंदर लगाना। अनन्या चिंतन, और किसी का नहीं, भगवान का चिंतन। चिंतन हम उसी का कर सकते हैं ना जिसका, जिससे प्रेम करें, है ना। जिस जिस वस्तु से आप प्रेम करते हो उसका आसानी से चिंतन हो सकता है। तो अब वो सारा प्रेम जो हमने जिस जिस वस्तु और व्यक्ति को दे दिया है उससे खींच के जब हम भगवान की ओर निर्माण करेंगे उस प्रेम का, तब हम भगवान का चिंतन कर सकेंगे। तो भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि जो दूसरा किसी का चिंतन नहीं करता, केवल मेरा चिंतन करता है। माम, माम शब्द लिखा है भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में। रथ के ऊपर खड़े होकर भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जना, ये जना। भगवान ने खुला निमंत्रण दिया। भगवान ने खाली ये नहीं कहा कि खाली ब्राह्मण लोग को मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि खाली जो शुद्ध पवित्र आत्मा है वही मेरा चिंतन कर सकते हैं। नवे अध्याय में तो भगवान ने हद कर दी, यहाँ तक कह दिया, अपिचेत सुदुराचारो। यदि आप दुराचारियों में, दुराचार मतलब गंदे से गंदे व्यक्ति कार्य करते हैं, उनमें भी 100 इकट्ठे करो, उनमें से एक छांट के निकालो, जो सबसे ज्यादा गंदा इंसान होगा ना, सुदुराचारी, वो भी यदि भजन्ते माम अनन्य भाव, वो भी कर सकता है। उससे भी कोई रोक नहीं है, उससे भी कोई पाबंदी नहीं है, उससे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो भी भगवान का, भगवान की भक्ति कर सकता है। इसे भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना। और आगे भगवान ने कहा पर्युपासते। उपासते कहते तो भी चलता था ना, उपासते का मतलब होता है पूजा करना, लेकिन यहाँ भगवान ने कहा पर्युपासते। पर्युपासते का मतलब होता है, उपासते का मतलब होता है भगवान के पास आओ, उनकी उपासना करो, उनसे कुछ प्राप्त करो और आनंदित हो जाओ। लेकिन पर्युपासते का मतलब होता है जो भगवान के पास आए, और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने इसका मतलब लिखा है ठीक से पूछते हैं। ठीक से मतलब क्या, बाकी सब गलत से पूछते हैं क्या? ठीक से मतलब है भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान के, भगवान का चिंतन करता है। हम यहाँ पर भौतिक जगत में सब लोग भगवान से प्राप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान से प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन वास्तविक तरीका क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की जाए। तो यहाँ भगवान ने भी देखो, भगवान बहुत चतुर हैं, शब्दों को ऐसे लिखते हैं। भगवान ने कहा ये जना पर्युपासते, वो व्यक्ति जो मेरी पूजा करता है मेरे लिए, ना कि भौतिक वस्तुओं के लिए। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मेरे पास आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे लिए मेरे पास आता है उसकी बात कर रहा हूँ। एक और वास्तव में कल्याण उसी का होगा जो भगवान के पास आएगा और भगवान पर उपासते करेगा, भगवान से भगवान को प्राप्त। एक राजा था, उसने पूरे अपने कंट्री में जहां पर वो राज्य करता था वहां पर यह अनाउंस कर दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है और मेरा राज्य है, ये पूरा राज्य मेरा है, और मेरे राज्य में आप जिस वस्तु पर हाथ रखोगे वो वस्तु आपकी। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि राजा कितना उदार है, कितनी वस्तुएं पूरी सारे राज्य में, जो वस्तु वो किसी की भी होगी मैं आपको लेके दे दूंगा। तो किसी को बहुत सारा सोना चाहिए, धन चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, जिस जिस पर हाथ कोई आया किसी को किसी लड़की से प्रेम था तो उस लड़की के ऊपर हाथ रखा तो राजा ने उसके साथ उसकी शादी करा दी। किसी को धन चाहिए तो धन के ऊपर रखा, किसी को हाथी चाहिए तो हाथी उसको दे दिया, किसी को क्या चाहिए, सब लोग आ आकर अपनी अपनी इच्छित वस्तुएं लेके जा रहे थे। एक बूढ़ी बूढ़ी माई थी, वो भी आई और बोला, राजा ये सब क्या कर रहे हैं, सब क्यों लेके जा रहे हैं? तो सबने बोला कि भाई राजा का जन्मदिन है और राजा ने यह घोषणा की है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो उसी हो गए। तो कितना खुश हुई वो बुढ़िया और कहा मुझे राजा से मिलना है। बोला राजा से क्यों मिलना है? बोला ये मैं राजा को ही बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करती। तो राजा के पास गए, लेके गए उसको और कहा, राजा ये बूढ़ी माई कहती है मुझे आपसे मांगना है। तो बोला हाँ ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है, आप मांगिए माता जी आपको क्या चाहिए। तो बोला मैं आके आके आपको बताऊंगी। बोला हाँ आ जाइए। आके गई और धीरे से अपना हाथ उठाया और राजा के सिर पर रख दिया। बोला राजा मुझे आप चाहिए हो। वास्तव में सबसे ज्यादा अक्लमंदी का काम उसी ने किया, क्योंकि भाव उस वो पूरे राज्य में जो कुछ था वो राजा का था। अगर राजा के ऊपर हाथ रख दिया तो समझो समग्र सृष्टि, अब तो वो राजमाता बन गई ना, समग्र जितना भी राज्य था वो सब उसके पास आ गया। किसी ने हाथी लिया तो हाथी मर जाएगा कुछ दिनों के बाद, वो तो वापिस से रोने लगेगा। किसी ने धन दौलत दिया वो तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन राजा जिसके पास है उसका तो सब कुछ हो गया। उसी प्रकार भगवान कहकर चले, पहले भगवान ने कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, ये प्रकृति में जो कुछ है मेरी अध्यक्षता में चलता है, इस भौतिक जगत में जो कुछ है वो मेरा है, इस भौतिक जगत में जो कुछ दिख रहा है वो मेरी कृपा से, जिसको जो कुछ मिल रहा है वो मेरी कृपा से मिल रहा है। तो जो ठीक तरह से पूजा करता है वो क्या करता है, भगवान मुझे भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो भगवान की जो परी उपासना करता है वो यही कहता है कि कृष्ण मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। तो भगवान ने कहा अनन्या चिंतयंतो मां ये जना परी उपासते, जो परी उपासते करते हैं, जो केवल मेरा ध्यान करते हैं, केवल मेरी उपासना करते हैं, केवल मुझसे प्यार करते हैं और केवल मुझसे मुझको मांगते हैं और किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं करते, उनके साथ क्या होता है, भगवान कहते हैं तेषाम, तेषाम मतलब उनको, किनको, नित्याभियुक्ताना, नित्य मतलब सदा, ऐसा नहीं है कि जब वो मेरे सामने आते हैं तो ही मेरे से मेरी पूजा करते हैं या मेरा ध्यान करते हैं, या फिर जब उनके पास कोई आवश्यकता नहीं होती है तब मुझसे मांगते हैं, लेकिन समय एक ऐसा आता है तब उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो उसी वस्तु के विषय में चिंतन करना शुरू नहीं। नित्याभियुक्ता नाम, जो कंटिन्यूअस इसी भक्ति में लगे रहते हैं, कंटिन्यूस मेरा चिंतन करते हैं और कंटिन्यूस मेरा नाम लेते हैं, कंटिन्यूस श्रद्धा से केवल मेरी पर उपासना करते हैं, उनके साथ क्या करता हूं, भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग कहते हैं जो उनकी आवश्यकताएं हैं। देखो शब्दों को समझना है हमें, भगवान ने कहा योग क्षेम, क्षेम कहते हैं सुरक्षा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि उनकी आवश्यकताओं को मैं प्रदान करता हूं और सुरक्षा करता हूं जो उनके पास है। योग मतलब जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करता हूं, क्षेम मतलब जो उनके पास है उनकी सुरक्षा करता हूं। कैसे, वहाम्यहम्, वहाम्यहम् का मतलब श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है वहन करता हूं। वहन करता हूं मतलब वहन किससे निकला है, जैसे किसी भी गाड़ी के ऊपर आप चढ़ते हो ना उसको बोलते हैं वाहन। मतलब वो भगवान कह रहे हैं कि उनकी आवश्यकताओं को मैं अपने ऊपर ढोकर उन तक पहुंचा देता हूं। ढोकर मतलब अपने ऊपर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं ही स्वयं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आता हूं। ये कितनी बड़ी बात है कि इस भौतिक जगत में भी यदि कोई हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, कोई राजा हो या कोई भी हो, तो वो खुद तो सामान लेकर हमारे घर पे नहीं आता ना, वो जरूर किसी न किसी नौकर के द्वारा हमें पहुंचाता है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। अभी देखो दो शब्द हैं, एक होता है वहाम्यहम यानी मैं ढोकर लेता हूं, और दूसरा होता है दहाम्यहम ददाम्यहम। ददाम्यहम मतलब मैं किसी के द्वारा भी आपको पहुंचा देता हूं। तो एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण थे, बहुत ही सुंदर टीका लिखी है उन्होंने महाभारत के ऊपर, बहुत ही सुंदर टीका है। उनकी टीका का नाम भी बहुत सुंदर है। उनका नाम है अर्जुन मिश्रा। अर्जुन मिश्रा की जो महाभारत की टीका वो लिख रहे थे, और आप जानते हो महाभारत के भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवद गीता आती है। तो जब श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक आया तो अर्जुन मिश्र ने जो महाभारत टीका लिखी है उसका नाम है अलंकार टीका। तो उसमें उसने जब ये महाभारत के भीष्म पर्व में जब भगवद गीता का यह श्लोक आया वहाम्यहम, तो उसने सोचा ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरी तो करते हैं, परंतु वाहन करके मजदूरों की तरह लेके थोड़ी आते होंगे। भगवान किसी न किसी के द्वारा भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करते होंगे। तो उसने, वो ब्राह्मण था टीका लिख रहा था, और उसने वहाम्यहम के बदले में लिखा दहाम्यहम, कि मैं भक्तों को किसी न किसी के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। लेकिन ऐसा लिखकर, मतलब उसने क्या किया, वहाम्यहम को रेड पेन से काट लिया और उसके साइड में लिखा दहाम्यहम, और उसके बाद उसने भगवत गीता बंद कर दी, टीका करना बंद कर दिया और गया मधुकरी करने के लिए। ब्राह्मणों का ये स्वभाव होता है कि वो मधुकरी करते हैं। ब्राह्मण मतलब अखिंसन, वो कुछ भी जमा करके नहीं रखते कि आज के लिए। जैसे वैश्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो संग्रह करते हैं, धन जमा करते हैं, उनको पूरा महीना काम करते हैं, सैलरी मिलती है और उस पूरी सैलरी को उसे पूरा महीना चलाना होता है। लेकिन ब्राह्मण की क्या वृत्ति है कि उसे डेली मधुकरी करके आना है, भगवान की कृपा से उसे जो भी मिले उसे स्वीकार करना है, फिर कल के लिए नहीं सोचना है, कल पुनः उसको जाना है, ये होता है ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण गए मधुकरी करने के लिए, आज कृष्ण कृपा से उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। उसने सोचा चलो ठीक है, आज अपनी पत्नी को कहेंगे कि आज एकादशी कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, भगवान की कृपा से हमें तो बार बार, लोगों को तो महीने में दो बार एकादशी करने का अवसर मिलता है, लेकिन हमें तो अक्सर करने का मौका मिलता है। ये भगवान की कृपा है कि हमें जब भी मधुकरी नहीं मिलती है तब हम उपवास कर लेते हैं। संतोषी ब्राह्मण था, संतोष था उसके मन में, और वो ऐसे ही सोच रहा था। ऐसे सोचते सोचते घर आ रहा था तो उसने सोचा घर में आज खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो समय बचा, थोड़ी देर के लिए बैठकर भगवान का नाम ले लेता हूँ, जप कर लेता हूँ, फिर घर जाता हूँ। एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, ध्यान में लग गया। उधर क्या हुआ, उसकी पत्नी के यहाँ पर, जहाँ पर घर में एक छोटा सा बच्चा जिसने धोती पहनी हुई थी पीले रंग की और लाल रंग का पीतांबर ओढ़ा हुआ था, कमर पर करधनी थी और बांसुरी लटकी हुई थी और मोर मुकुट पहना हुआ था, वो इतना सुंदर और आकर्षित एक छोटा सा बच्चा जिसका नीले बादल जैसा रंग था, वो आया उस माता के घर पे। उसने कंधे पर एक जैसे लकड़ी में नहीं टांगते हैं, लकड़ी में एक टंगी हुई थी बोरी, छोटी छोटी टंगी हुई थी, और उसमें व्यंजन थे, विभिन्न प्रकार की चीजें थी, आटा चावल दाल गुड़ घी दूध इत्यादि, तो वो सब ब्राह्मणी को दिए। और ब्राह्मणी दरवाजा खोला तो उसको देख के इतना मोहित हो गई, उसको देखकर इतना आकर्षित हो रही थी, देख देख के बहुत ही आत्मविभोर हो रही थी। और उस बच्चे ने कहा, ब्राह्मणी क्या आप देख रहे हो कब से मुझसे, ये सामान ले लो, मैं थक गया हूँ, कितनी देर से उठाऊं। तो फिर ना ब्राह्मण ने कहा हाँ हाँ दे दो बेटा, ये सब तुम्हें किसने दिया। तब उस बच्चे ने कहा कि ये सब मुझे ब्राह्मण ने आप तक पहुंचाने के लिए दिया है। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब गौर से देखा तो उस बच्चे की पीठ पर एक लाल कलर की, बहुत जोर से, जैसे किसी ने ना लकड़ी से जोर से मारा हो उसका निशान बन जाता है, वो निशान बना हुआ था। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तुम्हारी पीठ पर ये मारा किसने लकड़ी से? वहां से देखो खून निकल रहा है, तुम्हें लगा है ना बहुत, किसने मारा बताओ। तब उसने बच्चे ने बोला, मत पूछिए माता जी। बोला, नहीं मुझे बताओ इतना बड़ा अत्याचारी कौन है यहाँ पर? मेरा पति ब्राह्मण है, वो अवश्य उनको समझाएगा कि बच्चों के ऊपर इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए। तब उस बालक ने कहा, माता जी सत्य बताऊं, मुझ पर यह अत्याचार किसी और ने नहीं, आपके पति ब्राह्मण देव ने, अर्जुन मिश्र ने ही किया है। वो ब्राह्मणी ये सुनकर चकित रह गई, क्योंकि वो कहने लगी, मेरा पति तो कितना हृदय से दयालु है, वो तो किसी चींटी के ऊपर भी भाव नहीं मारता, और तुमने, तुम कितने सुंदर बालक हो, और वो तुमको, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकता है? मैं नहीं मानती, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हें मरहम पट्टी करती हूँ, और जैसे ही मेरे पति आते हैं मैं अवश्य उनसे पूछती हूँ कि वो ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैठो, मैं अभी प्रसाद बनाती हूँ, आज आप प्रसाद भी हमारे साथ ही खाना। तो ब्राह्मणी तो अंदर रसोई घर में गई, उनको मरहम वगैरह लगा के, फिर अंदर रसोई घर में वो प्रसाद बना रही थी, उतने में वो बालक तो चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब उसकी रसोई बन गई, उसके बाद ब्राह्मण भी आ गए। जैसे ही ब्राह्मण ने दरवाजा खोला, हाथ मुंह धोकर बैठे, तो वो कहने ही वाले थे कि ब्राह्मणी आज कुछ मधुकरी नहीं मिली तो इसलिए हम उपवास करेंगे, लेकिन वो ऐसा कहते उससे पहले ही ब्राह्मणी ने बहुत सारा प्रसाद उनके सामने रख दिया। मालपूरे थे, खीर थी, सब्जी, चपाती, दाल, राइस सब थे वो रखे। तो ब्राह्मण बहुत हैरान हो गया, बोला आज तो मैंने कुछ मुझे कुछ मधुकरी में मिला नहीं, ये सब प्रसाद कहाँ कैसे बनाया? तब उसने कहा ब्राह्मणी ने कि देखिए ब्राह्मण देव, ये कैसे बनाया वो बाद में बताते हैं, पहले ये बताइए कि आपने उस छोटे बच्चे को पीठ पर इतना जोर से मारा क्यों? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो? बताओ मुझे कैसा दिखता था वो जो आया था। तब ब्राह्मणी ने बताया कि पीले रंग की धोती पहनी हुई थी, पीतांबर ओढ़ा हुआ था, वैजंती माला थी और मोरपंख लगाया था, हाथों में बांसुरी भी थी, लेकिन पीठ पर बहुत बड़ा निशान था लकुटी के मारने का, तो और कह रहा था कि मुझे आपने मारा है। तब ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी तुम धन्य हो, ये सारा भोजन वही वाहन करके लाया था, अपने पीठ पे उठा के लाया था। बोला हाँ हाँ वही उठा के आया था, खुद उठा के आया था, अपने हाथों से मुझे दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपने उसे मारा क्यों? तब ब्राह्मण ने अपनी भगवत गीता खोल के ब्राह्मणी को दिखा रहे थे यही वाला श्लोक 9.22। बोला देखो यहाँ पर जिस जगह पर उसने वाहम्यहम को काट के आगे दाहम्यहम लिखा था, वो कटा हुआ जो था वो मिट गया था, मतलब वो अब नहीं कटा हुआ था, वो मिट गया था और दाहम्यहम शब्द नहीं था। तब उसने कहा कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भगवान के अंग स्वरूप है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, और क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवद गीता के शब्द को काटा और भगवान को कहा नहीं तुम खुद नहीं लाके देते हो, तो उन्होंने करके दिखाया कि नहीं मैं लाके देता हूँ, मैं अपने भक्तों की आवश्यकताओं को स्वयं आके पूरा करता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बात समझने की है कि भगवान ने आवश्यकताओं को पूरा करने की बात की है, इच्छाओं को नहीं। आवश्यकता तो एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, परंतु इच्छाएं तो राजाओं महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हम इस भौतिक शरीर में हैं, तो इस भौतिक शरीर की कुछ आवश्यकताएं कहां तक? कामेस्य नो इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता। जीव को इच्छा केवल इतनी करनी चाहिए कि हम जी सकें, और जिए तो क्यों जिए? तो शास्त्र कहता है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीना है तो केवल और केवल तत्व जिज्ञासा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीने का एक ही कारण होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा, भगवत जिज्ञासा, भगवान को समझना, भगवान को जानना, भगवान के साथ प्रेम करना। देखिए हम 9वें अध्याय पर हैं, यहाँ पर भगवान कोई हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग इसको भौतिक मानते हैं श्लोक को, लेकिन यहाँ भगवान ये वही भगवान है जिन्होंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही श्लोक में ये कहकर डांटा, अशोचान अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश्च भासत। तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, परंतु ये बहुत बेवकूफी की बात है कि तुम उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृतक के लिए शोक करते हैं। उन्हें उस भौतिक शरीर से कोई आसक्ति नहीं होती है। तो भगवान कैसे भौतिक वस्तुओं की या भौतिक शरीर से रिलेटेड वस्तुओं की देने की बात कर सकते हैं? श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाए। भगवान ने पहले कह दिया भाई चार प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास। 7.15 में भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ये चार प्रकार के जो आते हैं वो सुकृतिनो हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि वो मेरे अनन्य भक्त हैं जो मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए। अनन्य सिंधयंतो माम, तो भगवान ने आज कहा और ये कहा ये जना पर्युपासते, वो पर्युपासना करते हैं, मुझसे कुछ लेने नहीं, मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मेरे पास आते हैं, मुझे लेने के लिए आते हैं, मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं। इन व्यक्तियों की जो आवश्यकता है उनके लिए उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो उनके पास है उनको सुरक्षा करने। वास्तव में आज जीव की यही दो प्रॉब्लम है, हमें हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयास करना होता है और जो हमारे पास है उसको सुरक्षा के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने कहा अनन्य चिंतयंतो माम, जो केवल और केवल मेरा चिंतन करता है। तो कोई सोचे कि भगवान यदि हम सारा का सारा समय खाली तुम्हारा ही चिंतन करेंगे तो हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाएगा, हमारी वस्तुओं की रक्षा कौन करेगा, है ना, प्रोटेक्शन कौन देगा? तो भगवान कहते हैं उसकी फिक्र तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा और उसके पास जो है उसकी सुरक्षा भी मैं करूंगा। और श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि एक जीव की वास्तविक आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता है वो कंटिन्यूस भगवान की सेवा करता है। नित्याभियुक्ता नाम क्या करता है, श्रवण करता है भगवान के विषय में, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की सेवा करता है, अर्चन करता है दास्य भाव से, सख्य भाव से, और अपने आत्मनिवेदनम अपना सब कुछ भगवान को दे देता है और उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूरे होते हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो उससे जीव को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। और जब वो नित्याभियुक्ताना जो कंटिन्यूस भगवान की इस तरह नवदा भक्ति में लगा रहता है उसको क्या मिलता है, आत्म साक्षात्कार। जब उसे पता चल जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करके ही आनंद प्राप्त कर सकता हूँ और उसकी एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। अब उसकी कामना प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भक्त की कामना ये नहीं होती है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकर मिल जाए, धन मिल जाए जिससे मैं आनंदित हो सकूं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है। अब उसे पता चल गया है कि मेरी एक ही कामना है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, क्योंकि उसी से आनंद संभव है। तो ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। अब क्योंकि उसकी एक ही इच्छा रह गई, एक ही आवश्यकता रह गई है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की, तो उस इच्छा में उस आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान ने ली है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने ये नहीं लिखा है कि ऐसे भक्त की भौतिक आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं। अरे भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम श्रेया, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका तो सारा धन और श्रेय सब ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे प्रेम करने में बाधा बनते हैं। तो भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करूं, और भगवान उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसे पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच सकता है। यहां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह योग कहलाता है, भगवान के साथ मिलाता है आपको। जीव आत्मा की एक ही आवश्यकता है, जीव आत्मा का एक ही कष्ट है, एक ही दुख है कि वो भगवान से दूर हो गया है। और ये भगवान की जिम्मेदारी है कि जो अनन्य मन से केवल भगवान का चिंतन करता है, भगवान का पर उपासते करता है, भगवान उसे पुनः अपने से मिला देते हैं। उसके हृदय के अंदर जो गंदगी, गंदगी क्या है, भौतिक वस्तुओं की इच्छा ही तो गंदगी है। यदि उस गंदगी को भगवान को दूर करना है तो उस गंदगी को वो तुम्हें देंगे क्यों? भौतिक गंदगी तो निकालनी है भगवान को। वो भक्त नहीं है जिसके हृदय के अंदर भौतिक कामनाएं हैं, वो तो सौदागिरी करने आता है। यहाँ पर भगवान अनन्य भक्त की बात करते हैं, जो पर उपासते, जो केवल भगवान से भगवान को मांगने आते। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान को पहुंचता है। ये योग है, आपकी आत्मा की आवश्यकता है कृष्ण को प्राप्त करना, और उस आवश्यकता को पूरा करने की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। ये है आपकी वास्तविक आवश्यकता, और ये है आपकी वास्तविक सुरक्षा। यहाँ पर जो हमारे पास है उसकी सुरक्षा, हमारी केवल आत्मा है, भौतिक शरीर हमारा नहीं है, भौतिक वस्तुएं हमारी नहीं है। और आत्मा की सुरक्षा तभी संभव है जब वो इस भौतिक जगत से बाहर आ जाए, उसे वास्तविक धाम मिल जाए, और ये है वास्तविक क्षेम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान के द्वारा कृपामयी संरक्षण। योग का मतलब है भगवान आपको खुद से मिलाने का, अपने सानिध्य का पूरा प्रबंध करते हैं। आप बिना कठिनाई से भगवान को मिल सकते हो। और संरक्षण क्षेम का मतलब है कि भगवान आपको अपने धाम में पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, भगवान के द्वारा कृपामयी सुरक्षा। और अंत में जो श्री प्रभुपाद जी ने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। क्या करते हैं? आपको पूरी सहायता देते हैं, आपको भक्तों का संग देते हैं, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं, आपको ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं जो आपको भगवान के विषय में बताए, आपको ऐसा वातावरण देते हैं जिसमें आप पूरी से जो इच्छा, जो अनन्या चिंतयंतो माम ये जन। लोग कहते हैं कि हमारे पास ऐसा सरकमटेंसेस नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, लेकिन यदि वो ऐसा करना चाहेंगे, अनन्य मन से भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान को के पास भगवान के लिए जाएंगे, भगवान से प्राप्त करने के लिए नहीं जाएंगे, तो भगवान ने ये जिम्मेदारी ली है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे योग के द्वारा भगवान पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने की पूरी सहायता करेंगे। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये है वास्तविक योग और क्षेम, कि भगवान जीव को खुद से मिलाने का प्रबंध करते हैं कि किस तरह से जीव भगवान की भक्ति कर सके, अनन्य चिंतन कर सके, और फिर वापस से भगवान अपने धाम में उसे बुलाते हैं, पूर्ण संरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान उसे धन प्रदान करते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, और फिर जो उसके पास धन सामग्री होती है उसकी रक्षा करते हैं। वास्तव में ये भौतिक नहीं है। हम 9वें अध्याय पर आए हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान केवल हमारी आत्मा का कल्याण, क्योंकि हमारी आत्मा का कल्याण होना चाहिए। भौतिक शरीर को यदि वस्तुएं या जो भी भौतिक सामग्री मिल जाती है उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।